नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के इस जाल की और ये कैसे हमारी जीवन शैली, हमारी आदतों को बदल रहा है।
हाँ, मतलब ये जो डिजिटल दुनिया है इसके असर पर।
बिल्कुल, हमारे पास एक स्रोत है जो इसी विषय पर है, इंटरनेट के जाल और जीवन शैली विकार।
इसमें बताया गया है कि कैसे मोबाइल, लैपटॉप और इनके पीछे के जो एल्गोरिदम्स हैं,
वो सब मिलकर बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको प्रभावित कर रहे हैं।
सही,
तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि स्क्रीन टाइम का शरीर और मन पर क्या असर है, कैसे हमें ऑनलाइन बनाए रखा जाता है,
और हाँ, शायद इससे बचने के कुछ तरीके भी।
चलिए फिर शुरू करते हैं। पहली बात जो स्रोत उठाता है वो है शारीरिक असर।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अलग अलग डिवाइस हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल,
सबका स्क्रीन साइज अलग, इस्तेमाल का तरीका अलग,
और मोबाइल का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, औसतन 3 से 7 घंटे रोज,
और उसमें गर्दन सबसे ज्यादा झुकती
है ना?
बिल्कुल।
और इसके नतीजे काफी चिंताजनक हैं।
हाँ, मैंने पढ़ा चक्कर आना, गर्दन, कंधों में दर्द, और ये भी कि 15 साल जैसे कम उम्र में भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस।
हाँ जी, गर्दन के जोड़ों में दर्द और घिसाव, हाथों में झुनझुनी या सुन्नापन भी हो सकता है।
और ये बात तो मुझे चौंका गई कि सांस लेने की क्षमता 30% तक कम हो सकती है।
हाँ, ये सीधे तौर पर मतलब लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठने का नतीजा है।
गर्दन झुकाए रखना, स्क्रीन को सही लेवल पर ना रखना,
ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी समस्या बन जाती हैं।
तो ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन स्रोत कहता है कि स्क्रीन हमें मानसिक रूप से भी जकड़ लेती है।
हाँ, यहीं पर एल्गोरिदम और अटेंशन इंजीनियरिंग का खेल आता है।
अटेंशन इंजीनियरिंग, ये क्या है?
सोचिए कि स्क्रीन के पीछे बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर और प्रोग्राम हैं।
अच्छा,
उनका काम ये है कि हमें स्क्रीन से बांधे रखें। हमारा हर क्लिक, हर स्वाइप, वो सब डेटा है उनके लिए।
मतलब हम क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, कितनी देर, सब ट्रैक हो रहा है।
हाँ, बिल्कुल। और अगर हमने ऑडियो या वीडियो की परमिशन दी है तब तो, मतलब निगरानी का खतरा और भी बढ़ जाता है।
बाप रे, और इसी डेटा से वो हमें और कंटेंट दिखाते हैं।
हाँ, इसे रैबिट होल प्रक्रिया कह सकते हैं। आपकी रुचि के हिसाब से लगातार कंटेंट आता रहेगा
और हम उसमें खो जाते हैं, घंटों बर्बाद हो जाते हैं।
सही, इसमें सेलिब्रिटीज के विज्ञापन वगैरह भी भूमिका निभाते हैं,
और ये सब इसलिए ताकि कंपनियां पैसा कमा सकें, वो भी हमारी मुफ्त सेवाओं के बदले।
बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है। मुफ्त एप्स का बिजनेस मॉडल ही हमारा ध्यान और हमारे डेटा है। एल्गोरिदम इसी के लिए बने हैं।
तो ये ध्यान खींचने की होड़ हमें एक तरह की लत की तरफ ले जा रही है। स्रोत इसे वेब एडिक्शन कहता है।
हाँ, और स्रोत के मुताबिक ये आम नशे से ज्यादा खतरनाक हो सकती है।
क्यों?
क्योंकि ये आसानी से नजर में नहीं आती है, पेरेंट्स भी कई बार समझ नहीं पाते, और वेब पर जो कंटेंट है करीब 70% हिंसा या कामुकता से जुड़ा बताया गया है।
अच्छा,
वो लोगों को आसानी से फंसा लेता है। लक्षण बिल्कुल नशे जैसे होते हैं।
जैसे
बिना किसी असली संतुष्टि के बस देखते रहने की इच्छा, हमेशा और ज्यादा चाहिए,
और असल जिंदगी की जो कमी है उसे वर्चुअल दुनिया में पूरा करने की कोशिश करना,
जो कभी पूरी होती नहीं। और इसमें डोपामाइन का बड़ा रोल है।
हाँ, वो फील गुड केमिकल जब हम गेम खेलते हैं या कुछ मजेदार देखते हैं तो वो रिलीज होता है।
जी, और फिर दिमाग कहता है ये अच्छा लगा, दोबारा करो। एल्गोरिदम इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं,
तो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम हाईजैक हो जाता है एक तरह से।
बिल्कुल, आभासी दुनिया ज्यादा असली लगने लगती है, असल जिंदगी में खालीपन बढ़ता है। और ये किसी एक उम्र के लोगों की बात नहीं है, सब प्रभावित हैं।
और इस सबका असर हमारी नींद पर भी तो पड़ता होगा, खासकर युवाओं में जो 4-5 घंटे फोन पे बिता रहे हैं।
हाँ, बहुत गहरा असर। देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल करने से जो गहरी नींद होती है
वो कम हो जाती है।
हाँ, और गहरी नींद याददाश्त के लिए, फोकस के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से याददाश्त घटती है, दिन में ध्यान लगाना मुश्किल होता है।
और वो ब्लू लाइट वाली बात।
जी, मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोकती है। ये हमारा स्लीप हार्मोन है,
खासकर रात 10 से 2 बजे के बीच।
हाँ, उस समय इसका बनना बहुत जरूरी होता है। जब ये नहीं बनता तो हमारी जैविक घड़ी यानी सर्कैडियन रिदम गड़बड़ा जाती है,
और उसका असर अगले पूरे दिन पर, जैसे कब्ज, चिड़चिड़ापन, पाचन की समस्याएं।
सही कहा, नींद की कमी सिर्फ थकान नहीं लाती, पूरा सिस्टम बिगाड़ देती है।
तो ये समस्या तो काफी गंभीर है, लेकिन क्या स्रोत कुछ समाधान भी बताता है?
हाँ बिल्कुल, अच्छी बात यह है कि समाधान है। सबसे पहला कदम है जागरूकता।
ठीक है, और क्या है मुख्य बातें संक्षेप में?
कुछ चीजें हैं, एक तो स्मार्ट उपयोग, मतलब सही पोस्चर में बैठना, हर 20-30 मिनट में ब्रेक लेना,
स्क्रीन टाइम लिमिट करना।
हाँ, शायद हफ्ते में एक दिन मोबाइल फास्टिंग करना, नोटिफिकेशंस बंद रखना, सोने से ठीक पहले और जागने के तुरंत बाद फोन ना देखना,
वॉइस नोट ज्यादा इस्तेमाल करना, टाइपिंग कम,
ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा, डिवाइस पर अपना कंट्रोल रखना, खुद से पूछना मैं ये ऐप क्यों खोल रहा हूँ। इस्तेमाल के बाद ऐप बंद कर देना, फोन को मालिक ना बनने देना। तीसरा, असली जिंदगी पर फोकस करना, असली खुशी ढूंढना, सेवा के छोटे छोटे काम करना, प्रकृति से जुड़ना, स्वाध्याय, सत्संग, शारीरिक मेहनत,
मतलब वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर असली दुनिया से जुड़ना।
बिल्कुल, और नींद के लिए सोने से कम एक घंटा पहले स्क्रीन बंद कर देना।
और सबसे जरूरी शायद ये मानना कि हाँ, ये एक समस्या हो सकती है।
हाँ, स्वीकार करना, समझना कि ये एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, और तात्कालिक मजे के बजाय लंबे समय के लक्ष्यों को चुनना। स्रोत ऑडियो प्रोग्राम का भी जिक्र करता है, अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने के लिए।
कुल मिलाकर इंटरनेट और डिवाइस का अत्यधिक उपयोग शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है। इसके पीछे शक्तिशाली एल्गोरिदम है जो हमारा ध्यान खींचते हैं,
लेकिन समाधान हमारी अपनी जागरूकता और सचेत चुनाव में है।
आखिर में स्रोत एक बहुत दिलचस्प सवाल छोड़ता है।
हाँ, वो कहते हैं कि हम सिर्फ इन टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता बने रहने के बजाय इनका रचनात्मक उपयोग करने वाले निर्माता या रचनाकार कैसे बन सकते हैं।
ये सोचने वाली बात है, इस बदलाव की शुरुआत हम अपनी रोज की आदतों में कैसे कर सकते हैं।
बिल्कुल, इसी विचार के साथ शायद आज की चर्चा समाप्त करते हैं।